सुप्रभात बच्चों। तो आज मैं घनश्याम मीना TGT हिंदी संस्कृत आपके समक्ष कक्षा 7वीं के बाल महाभारत पाठ्य पुस्तक से पाठ प्रतिज्ञा पूर्ति के विषय में चर्चा करने जा रहा हूँ। तो हमने पिछली पाठ में पढ़ा था कि अज्ञातवास के समय पांडव विराट राजा के यहाँ रह रहे थे और अपना भेष बदल कर उन्होंने विराट राजा के यहाँ अपना अज्ञातवास का समय पूरा किया। और जब उनका अज्ञातवास का समय पूरा हो गया उसी समय तो दुर्योधन आदि के समक्ष वो प्रकट हो पाए, लेकिन दुर्योधन किसी भी तरह से ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था कि उनका अज्ञातवास की अवधि पूरी हो गई है। इसलिए अभी वह अपना राज्य हस्तिनापुर में से पांडवों को उनका जो हिस्सा है वो नहीं देना चाह रहा था। तो अब बिना युद्ध के यह संभव नहीं था, इसलिए अभी दोनों में युद्ध की संभावनाएं बढ़ जाती है कौरव और पांडवों में। और अज्ञातवास के बाद में जो पाठ प्रतिज्ञा पूर्ति है उसके विषय में आज हम आपको और विस्तार से समझाएंगे। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह आदि सब अर्जुन के प्रकट होते ही वो समझ गए कि आज अर्जुन क्रोध में है। और अर्जुन उनके समक्ष जब प्रकट हुआ तो उनको भी लगा कि अर्जुन हमारे सामने प्रकट हो गया है, लेकिन दुर्योधन उस अवधि को 13वां वर्ष पूरा नहीं मानता था और वह सोच रहा था कि अर्जुन हमारे सामने प्रकट हो गया है तो हमें डर किस बात का है। शर्त के अनुसार पांडवों को फिर से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताना होगा। अजीब बात है कि सेना के योद्धा भय के मारे कांप रहे हैं जबकि उन्हें दिल खोलकर लड़ना चाहिए। आप लोग यही रट लगा रहे हैं कि सामने जो रथ आ रहा है उस पर अर्जुन धनुष ताने हुए बैठा है, पर वहाँ अर्जुन की बजाय परशुराम हो तो अभी हम क्यों डरे। मैं तो अकेला ही जाकर उसका मुकाबला करूँगा और मैंने दुर्योधन को जो वचन दिया था उसे आज पूरा करके दिखाऊंगा। ये बात कर्ण अर्जुन से के बारे में कह रहा था, लेकिन अभी कर्ण को यूं दम भरते हुए देखकर कृपाचार्य बोलते हैं, कर्ण मूर्खता की बातें ना करो, हम सबको एक साथ मिलकर अर्जुन का मुकाबला करना होगा। यह सुनकर कर्ण को और गुस्सा आ गया। वह बोला, आचार्य तो अर्जुन की प्रशंसा करते कभी थकते ही नहीं हैं, हमेशा अर्जुन की ही प्रशंसा करते रहते हैं, उनके शौर्य की गाथा ही गाते रहते हैं। अर्जुन की शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर बताने की इन्हें एक आदत सी पड़ गई है। न मालूम यह वह के कारण है या अर्जुन को अधिक प्यार करते हैं। इस कारण जो भी हो मैं अकेला ही डटा रहूँगा। तो कारण क्या है ये बातें आचार्य जी को कह रहे थे। जब कर्ण ने आचार्य की यौन चुटकी ली तो कृपाचार्य के भांजे अश्वत्थामा से न रहा गया। वह बोला, कर्ण किया तुमने कुछ नहीं है और कोरी डींगे मारने में समय गवा रहे हो। डींगे यानी झूठ बोलते रहते हो हमेशा कि मैं ये कर दूंगा, अपनी खुद की बड़ाई खुद की प्रशंसा खुद ही करते रहते हो। इस प्रकार कौरव सेना के वीर आपस में ही वाद विवाद और झगड़ा करने लग गए। यह देखकर भीष्म बड़े खिन्न हुए, उनको दुख हुआ। वे बोले, यह आपस में बैर विरोध या झगड़े का समय नहीं है, अभी तो सबको एक साथ मिलकर शत्रु का मुकाबला करना है। पितामह के इस प्रकार समझाने पर कर्ण, अश्वत्थामा आदि वीर जो उत्तेजित हो रहे थे शांत हो गए सबको शांत देखकर भीष्म दुर्योधन से फिर बोले, बेटा दुर्योधन, अर्जुन प्रकट हो गया वह ठीक है, पर प्रतिज्ञा का समय कल ही पूरा हो चुका है। चंद्र और सूर्य की गति, वर्ष महीने और पक्ष विभाग के पारस्परिक संबंधों को अच्छी तरह जानने वाले मेरे कथन की पुष्टि करेंगे। प्रत्येक वर्ष में एक जैसे महीने नहीं होते हैं। भीष्म पिता, मैंने दुर्योधन को अच्छे से समझाया, लेकिन दुर्योधन तो कहाँ समझने वाला था, वो तो जिद्दी था, अपने जिद पर अड़ा रहता था। इसलिए उन्होंने उनको समझाया, भीष्म पिता मैंने, और कहा कि तुम्हें भ्रम हुआ है। जैसे ही अर्जुन ने गांडीव धनुष की टंकार की थी, मैं समझ गया था कि प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो गई है। दुर्योधन, युद्ध शुरू करने से पहले इस बात का निश्चय कर लेना होगा कि पांडवों के साथ संधि कर ले या नहीं। यदि संधि करने की इच्छा है तो उसके लिए अभी समय है। आप पांडवों से संधि कर लीजिए, उसके लिए अभी भी वक्त है। दुर्योधन ने कहा, पूज्य पितामह, मैं संधि नहीं चाहता हूँ। राज्य तो दूर रहा, मैं तो एक गांव तक पांडवों को देने के लिए तैयार नहीं हूँ। राज्य, आधा राज्य के तो दूर की बात, मैं पांडवों को एक गांव भी नहीं दूंगा। यह सुनकर द्रोणाचार्य की आज्ञा अनुसार कौरव वीरों ने व्यूह रचना की। उधर उत्तर ने रथ उसी ओर हाँक दिया जिधर दुर्योधन था, क्योंकि उत्तर तो पहले से ही डर रहा था, लेकिन अर्जुन ने उसे विश्वास दिलाया और अर्जुन ने धनुष कमान संभाला और सारथी की जगह पर उत्तर को बिठाया। अर्जुन ने गांडीव पर बाण चढ़ाकर दो दो बाण आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म की ओर इस तरह से छोड़े जो उनके चरणों में जाकर गिरे। इस प्रकार अपने बड़ों की वंदना करके अर्जुन ने दुर्योधन का पीछा किया। अर्जुन को दुर्योधन का पीछा करते देखकर भीष्म आदि सेना लेकर अर्जुन का पीछा करने लगे। अर्जुन ने उस समय अद्भुत रण कौशल का परिचय दिया। पहले तो उसने कर्ण पर हमला करके उसे बुरी तरह से घायल करके मैदान से ही भगा दिया। इसके बाद द्रोणाचार्य की बुरी गत होते देखकर अश्वत्थामा आगे बढ़े और अर्जुन पर बाण बरसाने लगे। अर्जुन ने जरा सा हटकर द्रोणाचार्य को भी वहां से खिसक जाने का अवसर दे दिया। अवसर पाकर आचार्य जल्दी से वहां से खिसक गए। उनके चले जाने के बाद अर्जुन अब अश्वत्थामा पर टूट पड़ा। दोनों में भयानक युद्ध होता रहा। अंत में अश्वत्थामा को भी हार माननी पड़ी। उसके बाद कृपाचार्य की बारी आई और वह भी हार गए। पांचों महारथी जब इस भांति परास्त हो गए तो फिर सेना किसके बल पर टिकती। सारी कौरव सेना को अर्जुन ने जल्दी ही तितर बितर कर दिया। सैनिक अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए तो अर्जुन ने अपने रण कौशल का परिचय देते हुए पूरी हस्तिनापुर की सेना को और उनके महारथियों को युद्ध में बुरी तरह से परास्त कर दिया और सेना डर के मारे इधर उधर भागने लगी। और इस भांति भीषण युद्ध करते हुए भी अर्जुन ने दुर्योधन का पीछा करना ना छोड़ा। पांचों महारथियों द्वारा अर्जुन को एक साथ रोकने का भी प्रयत्न किया गया, पर फिर भी उसे रोका न जा सका। अर्जुन आखिर दुर्योधन के निकट पहुंच ही गया। उसने दुर्योधन पर भीषण हमला कर दिया। दुर्योधन घायल हो गया और मैदान छोड़कर उनको भागना पड़ा। दुर्योधन को भी अर्जुन के सामने से पीछे हटना पड़ा। भीष्म ने उससे कहा कि अब वापस हस्तिनापुर लौट चलना चाहिए। भीष्म की सलाह मानकर सारी सेना हार मान करके हस्तिनापुर की ओर लौट चली। इधर युद्ध से लौटते हुए अर्जुन ने कहा, पुत्र अपना रथ नगर की ओर ले चलो, तुम्हारी गायें छुड़ा ली गई है, शत्रु भी यहाँ से भाग खड़े हुए हैं। इस विजय का यश तुम ही को मिलना चाहिए, इसलिए चंदन लगाकर और फूलों का हार पहनकर नगर में प्रवेश करना। अर्जुन ने कहा कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि युद्ध मैंने जीता है, क्योंकि ये जो विजय श्री का जो तिलक है वो आप ही के लगना चाहिए, इसका श्रेय आप ही को मिलना चाहिए, इसलिए आप चंदन लगाकर और फूलों का हार पहनकर ही नगर में प्रवेश करिए। रास्ते में अर्जुन ने फिर से ब्रह्मला का भेष धारण कर लिया और राजकुमार उत्तर को रथ पर बैठाकर सारथी के स्थान पर खुद बैठ गया और उन्होंने विराट नगर की ओर कुछ दूतों को यह आज्ञा देकर भेज दिया कि जाकर घोषणा कर दो कि राजकुमार उत्तर की विजय हुई है। और इस प्रकार विराट के युद्ध में अर्जुन ने हस्तिनापुर के पूरी सेना को तितर बितर कर दिया और उनके जो महारथी है सभी को युद्ध में परास्त कर दिया और पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। इस प्रकार प्रतिज्ञापूर्ति लेसन में मैंने आपको विस्तार से स्पष्टीकरण समझाया है। अब हम अगला जो लेसन विराट का ब्रह्म है वह अगली कक्षा में इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।